गोपी जन बल्लभा गिरिवर जन बल्लभा गिरिवर धाम जय गोपी जन जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन सारी यमुना यमुना तीरावन गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन जय यमुना तीरावन जारी यमुना तीरावन यमुना तीरावन जारी यमुना
प्रेम से गाइए ताली के साथ Oh,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, 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 Hare. Thank you.
एवं हाँ यह ठीक है। एतत् तुमने जो कहा है महाभाग हे महापुरुष यथा जिस तरह वदति तुम बोल रहे हो देहिना जीवों के विषय में अज्ञान प्रभवा अज्ञानवश अहम भी यह मेरा स्वार्थ मिथ्या अहंकार है स्वपरायते यह दूसरे का स्वार्थ है भिदा भेद यतः ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है ये पराया है के रूप में भेदभाव बरतते हैं। तात्पर्य भगवान के निर्देशानुसार कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है। अतएव हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हम इस बद्ध जीवन से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश यह सोचता है कि मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, या फिर यदि अज्ञान और भी अधिक बढ़ जाता है तो वह अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए बिना मनुष्य का तामसिक जीवन चलता रहता है। श्री प्रभुपाद की आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा। वंदेहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सर्वन ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे।
भूतेर्महत् पादयिमा पुरो विभु, निर्माय क्षेते यद मोक्ष पुरुषा। पुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मकं, स्वलं ग्रसिष्टं भगवान् वचांसि मे। जय श्री शिवाय के तारे भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव श्री बलराम की, श्री गौर निताय की। इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में पधारे हुए आप सभी भक्तों का श्री राधा के हरि मंदिर की ओर से स्वागत है। प्रभुपाद जी इस भागवत के आज 26वां श्लोक है, 19वें श्लोक के परपट में लिखते हैं कि जो श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति मार्ग है बड़ा श्रेष्ठ है। अन्य जो है कर्मी ज्ञान योग ये सब जो मार्ग है उसी से भले ही कुछ लोग अभक्त हैं लेकिन वो उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका चित्त शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए उनको गिरने का डर है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है जहाँ पर भगवान की कथा को सुन करके श्रवण करके कीर्तन करते हुए व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो स्वतः हृदय से स्फुरित होने लगता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से चित्त पर लगी हुआ जो मेल है कर्मों का, या चित्त पर अनेक अनेक वासनाओं का, वो जब खत्म हो जाता है तो पंचम पुरुषार्थ माना जाता है कृष्ण प्रेम। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राय संसार में लोग देखते हैं जानते हैं बातें की जाती हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, और उसी को प्राप्त करने के लिए भक्तों का यत्न होता है और करना भी चाहिए। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भगवान की कथा गुणों को सुन करके चित्त शुद्ध हो जाता है। सुख गोस्वामी भी कहते हैं कि इस जो विधि है इससे श्रेष्ठ विधि कोई नहीं है मन को शुद्ध करने की। मन शुद्ध न विद्यते, अन्य किसी भी विधि ऐसी नहीं है जिससे इतना जल्दी मन शुद्ध हो जाए, लेकिन भागवत श्रवण से हो जाता है। तो भगवान की परम अनुकंपा है, भगवान जी की कृपा है कि हम सब आपस में प्रतिदिन यहाँ पर बोधयन्ति परस्परम भागवत सुनते हैं सुनाते हैं। तो आज का जो प्रस्तुत श्लोक है जिसमें ये श्लोक वसुदेव जी के द्वारा उच्चारित है, और वसुदेव जी श्लोक में कंस के वाक्यों की सराहना कर रहे हैं। हम लोग भगवान के गुण गाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं लेकिन वसुदेव जी कुछ कंस के गुण गा रहे हैं क्योंकि गाने योग्य हैं। तो इस श्लोक में क्योंकि ये प्रसंग आप सब जानते हैं, भगवान का जन्म हो चुका है और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ गए हैं, और उनकी जो कन्या थी योग माया उसको लेकर आए हैं। और जब कंस ने सुना कि ये वसुदेव जी का आत्मा जो संतान है वो जन्म ले चुका है तो उनको भय था क्योंकि ये मेरे लिए मारने वाला बनेगा, मेरी मृत्यु का कारण है। तो जेल में जाकर के उस कन्या को लेकर के जब पटकने जाता है तो वो कन्या अष्टभुजा के रूप में माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और वो बताती है कि कंस तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो जब उन्होंने सुना कि माता दुर्गा ने ऐसा कहा तब वो भयभीत हो गए कि अब निश्चित मुझे मारने वाले भगवान जन्म ले चुके हैं, विष्णु जन्म ले चुके हैं, तो मेरी मृत्यु अब बहुत निकट आने वाली है। और उस समय उनको हृदय में ज्ञान होता है और वो वसुदेव और देवकी से क्षमा याचना करता है कई श्लोकों के आगे में, आगे कई श्लोकों में वो प्रार्थना करता है कि आप लोग तो साधु हैं और दूसरों के दोषों को नहीं देखते हैं और संसार के जीवों प्रति बड़ी करुणा है आप लोगों की, तो कृपया करके मेरे इस दुष्ट कार्यों को आप क्षमा कर दीजिए। और साथ ही साथ वो ज्ञान की बात करता है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा अलग चीज है और शरीर को मारा जाता है लेकिन आत्मा को नहीं मारा जाता, इसलिए वो कंस अपने मुख से बोल रहा है कई श्लोकों में कि इसलिए मैंने जिनको मारा, भले मैंने शरीर को मार दिया लेकिन वो आत्मा तो मरती नहीं है आप जानते हैं, तो इसी के कारण मैं इसी का हत्यारा नहीं हूं। और गीता के सिद्धांत को बता रहा है वो श्लोकों में। भगवान भी गीता में कहते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति की बुद्धि इस देह में नहीं है ऊपर उठ चुका है, जब अर्जुन को मोह प्रकट हुआ महाभारत के युद्ध में कि मैं कैसे मारूंगा, तो भगवान दूसरे अध्याय में कई श्लोकों के आत्मा के बारे में बताते हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं सबको मारूंगा ऐसा नहीं है, तू इसे नहीं मार सकता क्योंकि ये शरीर नहीं है आत्मा है। न सेवाम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न सेव भविष्याम सर्ववयमत परम। और कहते हैं कि ये सब जो है पूर्ववित है, अब भी है बाद में भी रहेंगे, तुम भी रहोगे मैं भी रहेंगे, क्योंकि न हन्यते हन्य माने शरीरे, इस शरीर को हत मारने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो इस प्रकार से जब ज्ञान की बातें करता है कंस, तब वसुदेव जी इस श्लोक में उनकी सराहना करते हैं कि एवं तेतर महाभाग हे कंस, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो ये सब बातें सुनकर और क्षमा याचना करने पर वसुदेव और देवकी उनके सारे अपराधों को भूल जाते हैं, यही है भक्तों की विशेषता, और दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। वास्तव में यदि भक्त बनना है तो सहन तो करना पड़ेगा, है ना। वसुदेव देवकी जब भगवान के माता पिता बने तो बहुत सहन करना पड़ा, और प्राय देखा जाता है और कहा जाता है कि जो सज्जन व्यक्ति है उन पर ज्यादा कष्ट आता है और भक्तों के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन भक्त वो है जिसे इस दुख में भी सुख दिखाई दे। वैष्णव बनना भक्त बनना ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, तब हम प्रयास भी कर रहे हैं सब मिलकर के कि हम भक्त बने, भगवान की सेवक बने, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि हम भक्त बने या नहीं बने, कितने समय से जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो दूसरा तो कोई आगे नहीं बताएगा लेकिन अपने बारे में हम खुद जानते हैं, है ना। या दूसरे से ज्यादा हम खुद ही जानते हैं कि हम कितने भक्त हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ये बात देख लेनी चाहिए कि संसार में जब दुख आता है तो क्या हमें वो सुख दिखाई देता है कि नहीं। यदि वो दुख भी सुख दिखाई देता है तो समझिए कि भक्ति में कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दुख दुख ही दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि अभी बहुत कमी है, है ना। भक्तों के जीवन में जहां जहां भी दुख आया आप देख लीजिए, वो उसे सुख समझते हैं और वो सुख ही होता है उनके लिए। महाभारत के प्रसंग में जब महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ और भगवान कृष्ण और अनेक अनेक ऋषियों के द्वारा उनको समझाया गया कि आप शोक मत करें, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप पितामह भीष्म से उपदेश लीजिए, वो आपको बताएंगे। और उसके कहने पर तो आप मान जाएंगे ना? बोले हाँ, वो जो कहेंगे मान लूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं राज्य पर बैठू। और तब जाकर पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पितामह भीष्म कहते हैं कि पांडवों, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आया है, तुम इस दुख के कोई कारण हो ही नहीं, क्योंकि पितामह कहते हैं कि साक्षात धर्म हो, दूसरा तुम्हारे साथ साक्षात ईश्वर है कृष्ण परम ब्रह्म, वो भगवान अखिलेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आया है उसके कारण तुम्हारा कर्म या कुछ है ही नहीं। बोले तो क्या कारण है? बोले देव ही कारण है, भगवान ही कारण है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आए। तो भगवान क्यों कष्ट देना चाहते हैं अपने भक्तों को? बोले उनके कष्ट में भी उनकी कृपा छिपी रहती है। वो जहां जहां कष्ट देते हैं भक्त उससे एक पद आगे बढ़ता है भक्ति में, है ना? जैसे रामायण का प्रसंग है, वाली जो था, वाली का भाई था सुग्रीव, है ना? तो सुग्रीव को वाली ने निकाल दिया अपने घर से, तो ये उनके लिए कष्ट था। लेकिन जब भगवान उनको मिले है? तब वो मन ही मन खुश हो रहा है कि वास्तव में मेरा भाई वाली ने मुझे कष्ट नहीं दिया। आज यदि मुझे घर से निकाला नहीं होता, मेरे पर ये कष्ट नहीं आया होता, तो भगवान शायद मुझे नहीं मिलते। लेकिन आज निकाल दिया घर से, इसलिए भगवान से भेंट हुई। वैसे कई कई भक्तों के इतिहास में बताया गया है ना, ध्रुव का प्रसंग भी ऐसा ही कुछ है। उनकी माता ने कटु वचन कहे, दुख दिया, इसलिए वो भगवान की भक्ति की राह पर निकल पड़े। यदि राजसिंहासन पर बिठा दिया होता तो शायद वो नहीं जाते। तो भक्तों के जीवन में जब भगवान कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं तो कृपा ही करते हैं। तो वसुदेव जी और देवकी भगवान के माता पिता हैं और भगवान की सेवा के लिए उसने इतना कष्ट उठाया और जगत को दिखाना चाहते हैं, कष्ट तो आएगा, लेकिन उनके लिए वो कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि भगवान की ऐसी कुछ इच्छा थी। तो उन्होंने उस कंस के अपराधों को क्षमा कर दिया, भूल गए। जब कंस इस प्रकार क्षमा करने लगा, जैसे भगवान में क्षमा करने का गुण है, वैसे उनके भक्तों में भी क्षमा करने का बहुत महान गुण है, और इसी से ही वो महान है, है ना? जैसे भगवान भी क्षमा करने के गुण जिनमें बड़ा है, इसी के कारण वो महान है। जीवों की गलतियों को वो भूलते रहते हैं, अपने भक्तों के भूलों को वो भूलते रहते हैं और छोटे से गुण को बड़ा करके देखते हैं और बड़ी बड़ी गलतियों को वो छोटा करके उसको भूल जाता है। यह भगवान का स्वभाव। अब सब परिचित है प्रसंग से कि जब ऋषि मुनि एकत्रित हुए बहुत सारे और उसमें एक प्रश्न हुआ कि कौन भगवान है, ब्रह्मा, शिव या फिर विष्णु। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और आपस में ये चर्चा हुई कि कौन भगवान है, कैसे तय किया जाए। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के भृगु ऋषि को नायक बनाया कि आप सबकी परीक्षा कीजिए, तब पता चल जाएगा कि कौन भगवान है। और तब जाकर के भृगु ऋषि सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास उनकी परीक्षा करने के लिए। और वहां जाकर के परीक्षा करते हैं, यद्यपि वो उनके पुत्र है, लेकिन वहां जाकर के ब्रह्मा जी का कोई आदर नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है कि इनको इतना अभिमान आ गया, मेरा पुत्र होकर के मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा है। और तब जाकर के उनकी आंखों में क्रोध आ गया। तो भृगु ऋषि ने समझ लिया कि इनको तो क्रोध आ गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तब जाकर के वो गए भगवान, वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी के पास जाकर के वो वैसे रिश्ते में उनके भाई लगते हैं, तो जाकर के उनका अपमान कर दिया कि तुम ऐसे ही बैठे रहते हो नंग धड़ंग, कुछ पहनने का ठिकाना नहीं है, कुछ बैठने का ठिकाना नहीं है, भस्म लगाए रहते हो। इस प्रकार जब अपमान कर दिया गया तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए और हाथ में त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। तो पार्वती जी ने उनको रोक लिया। भृगु ऋषि ने देख लिया कि इनमें भी क्रोध तो आ गया और अंत में वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास और उनकी परीक्षा करने के लिए क्या किया, बोले जा करके भगवान शेष सैया पर सो रहे हैं, जा करके धड़ाम करके अपने पग से पांव से लात मार दिया भगवान विष्णु की छाती पर। और जब लात मारी छाती पर तो भगवान खड़े हो गए अपने स्थान से और भृगु ऋषि के पांव को सहलाने लगे कि कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती वज्र के समान कर रहा है। और इतना वाक्य सुनते ही भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में करुणा निधान दया निधान यही भगवान हो सकता है। और इसीलिए संत कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। छोटे जो होते हैं वो अपराध किया करते हैं, लेकिन बड़े में यही गुण होता है कि वो क्षमा करते हैं। और महान लोग जो होते हैं उसी में यही गुण होता है कि वो क्षमा करते रहते हैं। और यहां पर और कहते हैं कि उसमें भगवान विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने लात मारी, क्योंकि वो क्षमावान है। तो यहाँ पर भगवान के भक्त वसुदेव जी भी कंस के अपराधों को भूल गए, उनको क्षमा कर दिया। और क्षमा करके फिर वो ये वचन बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि एवं एतन महाभाग। सबसे पहले वो संबोधन कर रहे हैं महाभाग। अब इसमें कौन सा ऐसा गुण था कि उनको महाभाग कह दिया, है ना? भागवत में सुखदेव गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी कभी कभी श्रोताओं के लिए महाभाग शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की कथा सुनने के लिए देते हैं। तो इनको भी महाभाग शब्द करके संबोधन कर दिया। क्यों कर दिया, उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि जब वो तत्व ज्ञान में वो पूरा समझ गया था, उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि मैं समझ चुका हूं इस संसार के बारे में, और ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा जब उन्होंने की, तब कंस वसुदेव जी ने सोचा कि कम से कम इसको ज्ञान तो है, महाभाग्यवान है ना। आज जगत में संसार में लोग इसी संसार में रचे पचे रहते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है, है? कि मैं जीवात्मा हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ है, ये संसार मिथ्या है। तो ज्ञान हो गया वो महाभाग है, एक बात है। ये बड़ा मुश्किल है कि लोगों को ज्ञान हो जाए कि मुझे भगवान की भक्ति करनी, उनकी सेवा करना, यही मेरा परम धर्म है। आज लोगों को ये ज्ञान जल्दी नहीं होता है, है ना। कई समय पर भक्ति करने के बाद भी संसार की आसक्ति नहीं छूटती है, मन में वो ठान नहीं लेता है कि बस अब भजन करना है, है ना। व्यक्ति काम 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 में लचा पचा रहता है, है ना। आज काम कल ही काम, परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम, विश्रण श्याम शरणा। इस काम में रहते रहते व्यक्ति सोचता है आज भी काम है कल भी काम है। किसी को पूछो तो कहता है कि आज बहुत काम है, कल भी बहुत काम है, परसों भी काम है, है? और उसी में वो भगवान के चरणों को विस्मरण कर देता है, काम ही। और आगे वो कहते हैं सुदास जी कि सोवत काम जागृत काम, व्यक्ति जग करके काम में लग जाता है और सोता है तो यही चिंतन करते करते कि कल काम करना है, ये करना है, वो करना है, इसी में सो जाता है। और काम में ही पसी मरना, और इसी प्रकार काम काम करते करते एक दिन वो मर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि छाड़ी काम, इस काम का छोड़ करके हे जीव श्याम शरणा, भगवान श्याम के शरणों का भजन किया जाए, यही जीवन धन्य है। नहीं तो ऐसे एक दिन मर जाएंगे, इस समय चला जाएगा, जो दुर्गम काल किसी के रोके नहीं रुकता है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वसुदेव जी के द्वारा जब इस प्रकार कंस को क्षमा कर दिया, और वो कहते हैं कि महाभाग, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है, और भगवान ने जीव को ज्ञान हो जाए उसके लिए कई कई प्रयास है ना। जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, स्वतः उनको कभी ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान ने व्यवस्था की है, ऐसे सत्संग का व्यवस्था की गई है, ताकि सब जीव यहाँ पर आकर के भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। दूसरा अर्थ एक आचार्य कहते हैं कि महाभाग क्यों कहते हैं, क्योंकि वसुदेव जी ने देख लिया कि इनकी जो मृत्यु है परम शोभनम है, क्योंकि ये भगवान के हाथों से मरने वाला है, इसलिए महाभाग। भगवान के हाथों से मरना कोई कम बात नहीं है, भगवान के हाथों से मरना माने उनकी सदगति हो जाती है। वो भले किसी भाव से आया, लेकिन भगवान मार देते हैं उनको, पूतना को मार दिया, मार क्या दिया, तार दिया। वैसे कंस को भी यहां मारेंगे, अनेक असुरों को भगवान ने मारा है। तो वसुदेव जी बात पर विचार कर रहे हैं कि ये महाभाग है, क्योंकि ये भगवान के हाथों से मरने वाला है। हमारे इतिहास में, पुराणों में ऐसे ऐसे उदाहरण है कि जहां पर भगवान के हाथों से मरने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक तो प्रसंग आप सब जानते हैं, जैसे जय विजय जब भगवान के धाम से भूतल पर आए है ना, तो उन संतादिक उन्होंने यही व्यवस्था दी थी कि जल्दी से जल्दी यदि मेरे धाम में आना है, भगवान के धाम में यदि जल्दी से जल्दी वापस आना है, तो भगवान से वैर करके, उनके हाथों से मर करके 3 जन्म में आप जल्दी से भगवान के पास आ सकते हैं। और एक उदाहरण मिलता है, महाभारत का प्रसंग है, बर्बरिक, किसी को कथा याद है वो बर्बरिक की? बर्बरिक जो है वो भीम का एक पुत्र था घटोत्कच, और उस घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक, और वो इतना पावरफुल था, मतलब उनके पास ऐसी विद्या उन्होंने प्राप्त की थी जो पितामह भीष्म और अर्जुन के पास भी नहीं थी। तब प्रश्न हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों, कैसे किया? क्योंकि भीम की जो पत्नी थी हिडम्बा, जब ये पांडव लोग जब वनवास के लिए गए, उस समय वो हिडम्बा, यद्यपि वो असुर की पुत्री थी, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा स्नेह था, और वो चाहती थी कि मुझे भीम जैसा पुत्र चाहिए। तो कुंती महारानी से याचना करने पर भीम से उनका विवाह हुआ, और भीम के द्वारा घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ, और उस घटोत्कच का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था बर्बरिक। तो हिडम्बा ने बचपन से ही उस बर्बरिक को बहुत सुंदर ज्ञान दिया था, भगवान के बारे में सुनाया था। तो ये सुनते सुनते, ज्ञान प्राप्त करते करते जब वो 10-12 साल का हुआ, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, क्योंकि अब भगवान के बारे में जो कोई सुन लेता है, जान लेता है, तो उसको पाने के लिए वो तड़पता है कि कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, है ना। जैसे रुक्मणी ने भी भगवान के बारे में सुना, तो उनको पाने के लिए उन अपने आप को वरण कर दिया भगवान से कि मैं अपने आप को भगवान को सौंप देती हूँ, अब उनको पाना है, उनके सिवा और किसी से विवाह नहीं करना। तब जब बर्बरिक ने मन में ठान लिया, और उन्हें मन में प्रश्न हुआ कि हे दादी, उनकी दादी लगती थी, अब मैं उस भगवान को पाना चाहता हूँ, कैसे मिलेंगे? तब उन्होंने कहा कि भगवान ने तो अपने आप को पाने के लिए बहुत सारे उपाय दिए हैं, उसमें बहुत सारे मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। बोले मुझे जल्दी भगवान को प्राप्त करना है, कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं भगवान को जल्दी प्राप्त हो जाऊं। तब उस माता ने कहा कि बेटा यदि जल्दी प्राप्त करना है तो भगवान के हाथों से मरना होगा। तो बोले मैंने तो सुना कि भगवान तो इतने दयालु है कि वो अकारण ऐसे किसी को मारते नहीं है, तो मुझे कैसे मारेंगे। बोले यदि उसको उसके हाथों से मरना है तो उनको विवश करना पड़ेगा, तभी वो किसी पर अस्त्र चलाते हैं, अकारण नहीं मारते हैं। बोले कैसे संभव होगा। तब भगवान को जब विवश करना है ना, तब उन्होंने ऐसे अस्त्र शस्त्र विद्याओं के लिए तपस्या की और तपस्या करके ऐसे अस्त्र शस्त्र विद्याओं को प्राप्त किया कि जिसके हमें आगे इस संसार का कोई व्यक्ति न टिक पाए, ऐसी शक्ति उन्होंने हासिल कर ली। और ठीक उसी समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, और जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा है? और भगवान अंतर्यामी उन्होंने देख लिया कि बर्बर एक रथ पर सवार होकर के जा रहा है। तो भगवान ने देखा कि यदि ये महाभारत के युद्ध में भाग लेगा तो एक ही बाण में वो पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर देगा, इतना पावन है। तब भगवान बीच में ही ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बर्बरिक को कहा कि तू कहाँ जा रहा है। बोले मैं जा रहा हूं महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए। अच्छा तुम किसकी ओर से युद्ध में भाग लोगे, क्योंकि वहां पर तो दो पक्ष हैं, कौरव और पांडव। तब बर्बरिक ने कहा कि जो पक्ष मुझे दुर्बल दिखाई देगा उस युद्ध में करते करते युद्ध करते करते उसी की ओर से मैं लड़ूंगा। भगवान ने कहा यदि वो पक्ष अधर्मी हो तो। बोले तब भी मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा, क्योंकि एक योद्धा का कर्तव्य होता है जो निर्बल होता है उनका साथ दे। भगवान ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है। बोले तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम निर्बल पक्ष से युद्ध करके उनको जीत दिलाओगे। बोले हाँ। बोले क्या शक्ति है। बोले मुझ में इतनी शक्ति है कि मेरे एक ही बाण में इस महाभारत के तमाम योद्धा सैनिक सबको एक ही बाण में खत्म कर सकता हूं। भगवान ने कुछ भगवान ने कहा कुछ चमत्कार तो दिखाओ कि क्या तुम्हारे पास ऐसा है। तो बर्बरिक ने कहा कि यदि सामने सेना हो तब दिखाओ ना। तो भगवान ने एक वट वृक्ष दिखाया। बोले इस वृक्ष को देखो और उसके जितने भी पर्ण हैं, पांद हैं, उसको तुम महाभारत का सैन्य समझ लो और एक ही बाण में इस सब को समाप्त करो। तो बर्बरिक ने अपने हाथ में बाण लिया और बाण लेकर के उन्होंने अपने बाण का संधान किया। और जब वो आंखें बंद करके संधान कर रहे थे तो भगवान ने एक कपट किया, उस वट वृक्ष में से दो पान को तोड़ लिया, एक अपने हाथ में रख लिया और दूसरा अपने पैर के नीचे दबा दिया। और जैसे ही बर्बरिक ने बाण छोड़ा तो जितने भी पर्ण थे उस वट वृक्ष में, मतलब अनगिनत जिनको गिनना मुश्किल है, वो सबको बिंद दिया, सब में छेद हो गए। और भगवान ने जैसे अपने हाथ से वो पत्ता खोल करके देखा तो उसमें भी छेद था। और पैर से पैर नीचे जो पान रखा था उसको निकाला तो उसमें भी छेद। भगवान ने कहा कि ये निश्चित महाभारत के युद्ध को खत्म करेगा, और यदि ऐसा करेगा तो धर्म के नाम पर अधर्म की विजय हो जाएगी। अब क्या करें। तब भगवान ने कहा ब्राह्मण के वेश में से, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बर्बरिक ने कहा मुझे कोई नहीं रोक सकता है? पांडव भी मुझे नहीं रोक सकते, तुम क्या रोकोगे। बोले नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बोले मैं जाऊंगा। और जब बहुत जीत की तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और वहीं पर उनका वध कर दिया। और जब वध किया तो तुरंत वो बर्बरिक का जो सर था भगवान से कहने लगा कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, क्योंकि मैं यही चाहता था। आप भले ब्राह्मण वेश में आए लेकिन मैं जानता था कि आप भगवान हैं और आपके हाथों से मैं मरना चाहता था। क्योंकि आपके हाथों से मर करके मुक्ति मिल जाती है, आपका धाम मिल जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम धन्य हो। भगवान ने कहा अब तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले हाँ एक इच्छा है। क्या? बोले महाभारत के युद्ध को मैं देखना चाहता। और तब उस बर्बरिक को भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान की कि उन्होंने अपने उस सर से पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। और फिर जब महाभारत का युद्ध का अंत हो जाता है और अर्जुन और भीम को थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि इस महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम किसने किया, भगवान को पूछते हैं। तो भगवान फिर उस अर्जुन और भीम को और पांडवों को लेकर वहां पर जाते हैं बर्बरिक के पास और कहते हैं आप इनसे पूछिए क्योंकि महाभारत का युद्ध इन्होंने देखा। तब वो बर्बरिक कहता है कि हे भीम, हे अर्जुन, ये महाभारत के युद्ध में भगवान से ज्यादा पराक्रम और किसी का नहीं है। क्योंकि अर्जुन के बाण से, धनुष से जब बाण निकलता था उसके पहले तो वो आगे जो व्यक्ति सामने था उसकी मृत्यु हो जाती थी। भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था। तो हमारी मूल बात यह थी कि भगवान के हाथों मरने के लिए उन्होंने इतना उद्यम किया और भगवान के हाथों जो मरता है वो तो निश्चित सदगति या भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसीलिए वसुदेव जी यहाँ कहते हैं महाभाग, क्योंकि तुम आगे चलकर भगवान के हाथों से मरने वाले। फिर वदसी देही नाम वो कहते हैं कि हे महाभाग, तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। क्या कहा उन्होंने? अज्ञान प्रभावा अहम धी स्वपरे इति विधायतः। कहते हैं कि जगत संसार में जो जीव है अज्ञान के प्रभाव के कारण अहम धी, अहम मम इति, देह बुद्धि करने वाले जो जीव है उस अहम बुद्धि के कारण ही वो किसी को पराया, किसी को अपना मानते हैं। यदि ये अहम बुद्धि निकल जाए, ये अहंकार बुद्धि, देह बुद्धि जो निकल जाए, तो वो समझ सकता है कि सारे संसार में जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं और मेरे लिए वो सब आदरणीय हैं, मेरे अपने हैं। लेकिन जब अहम बुद्धि आ जाती है, शरीर बुद्धि आ जाती है, तो शरीर बुद्धि आते ही ये मेरा है, ये दूसरे का है। और जब मेरा और पराया आता है तो उसमें राग और द्वेष प्रकट होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे धृतराष्ट्र महाभारत भगवद गीता का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध माम का पांडवाश्च एव किम कुरुत संजय। धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने इस युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न पूछा गया जब पितामह भीष्म को धराशायी किया गया, उसी समय संजय जो है हस्तिनापुर में आते हैं और तब से भगवद गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। तो वहां पर वो पूछते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो वहां पर बहुत सुंदर उस पर से तारतम्य आचार्य ने निकाला है कि वो मेरे और पांडव शब्द यूज कर रहे हैं, माम का पांडवा। यद्यपि पांडु के मर जाने के बाद ये पांडव भी अपने पिता धृतराष्ट्र को ही मानते थे कि यही हमारे पिता हैं, और छोटे भाई के पुत्र होने के नाते ये उनके पुत्र के तुल्य थे। और पांडव तो मानते भी थे पिता, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ये शब्द से पता चलता है कि माम का पांडवा सेव, मेरे और पांडव, क्योंकि अहम बुद्धि आई ना जब शरीर से उत्पन्न हुए हैं वो पुत्र है ना। शरीर बुद्धि जब आ गई कि मैं हूं तो ये मेरा है और ये उनका है। तो अहम बुद्धि के कारण मेरे और पांडव के पुत्र ऐसी भ्रमणा हुई और इसी के कारण राग और द्वेष हुआ। जब मेरे हैं उसमें राग हुआ और जो दूसरे के हैं उसमें द्वेष हुआ। तो ये वहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रकृति के नियम के कारण सब लोग इसी देह बुद्धि में फंसे हुए हैं, इस अज्ञान के कारण। तब हमारा क्या कर्तव्य है? अज्ञान प्रभाव शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव आज संसार में दुखी है, यहाँ भटक रहा है, उन सब के पीछे कारण यही है अज्ञान। वो अज्ञान में है। यदि ज्ञान हो जाए तो सुखी हो सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान कैसे होगा? कोरा ज्ञान भी कुछ काम नहीं करेगा। ज्ञान होगा भक्ति ज्ञान विराग्याप्त हो, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए मूल सिद्धांत यही है कि भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की कथा सुनी जाए और भगवान का नाम लिया जाए। हरे कृष्णा कृष्णा इससे ज्ञान होगा। और व्यक्ति संसार के जो देह अहम बुद्धि है उससे मुक्त हो सकता है, ये केवल इसी से होगा। और इस बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए हमारे जो बुद्धि है वो बिगड़ी हुई है, संसार के मलिन काम क्रोध वासना इन सब चीजों से हमारी बुद्धि जो है वो बिगड़ चुकी है। अब इस बुद्धि को शुद्ध बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम ठीक ठीक जीवन में निर्णय कर सकते हैं। और उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए जैसे एक किसी पति की पत्नी होती है, तो पत्नी है दो प्रकार की होती है, एक सती होती है और असती होती है। सती जो पत्नी होती है वो अपने पति के लिए शुभचिंतक साबित होती है और निरंतर उनके लिए शुभ उनके हित के लिए ही निर्णय करती है। लेकिन असती जो होती है वो अपने लिए निर्णय करती है। तो बुद्धि को सती बनाने के लिए भागवत में जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं, है ना, जब राजा रघुगण जा रहे थे पालकी में और महाराज भरत जड़ भरत के रूप में जब उनको मिल गए, तब वो उनसे कहते हैं कि तुम जो अहंकार अहम बुद्धि रखते हो, इस बुद्धि के कारण केवल तुम्हारा विनाश होगा, क्योंकि तुम आत्मा हो और ऐसी अहम बुद्धि रखते हो कि मैं राजा हूं और ये सब नौकर है, ये है। तुम अपनी बुद्धि को सती बनाओ। तब बोले कैसे सती बन सकती है? तब वो एक श्लोक को उच्चारण करते हैं, यत्रोतम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुत यते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमाणो वनुदिनं मुक्षोर्मति सती यस्यति वासुदेवे। कहते हैं कि यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादा, जहां पर भगवान के गुण गान गुण कीर्तन रूप नाम रूप गुण कीर्तन की चर्चा हो रही हो, ऐसे भक्तों के बीच में रहना, भक्तों के संग में रहना, ये करने से क्या हो? बोले वहां पर भगवान के गुण कीर्ति की चर्चा होती है और ये सुनते सुनते मति सतिम, पहले तो जब भगवान की चर्चा होती है तो ग्राम्य कथा विधात, संसार की कुकथाओं के लिए वहां कोई स्थान नहीं होता है। कुकथा वहां होती है जहां अभक्त होते हैं, और भक्त बनकर भी यदि हम कुकथा करते हैं तो हम भक्त नहीं है, है ना? तो ये कुकथा जो है वो संसार के लोगों में होती है, अभक्त में होती है। भक्त तो निरंतर बोधयंती परस्परम सताम प्रसंगान मम वीर्य सम्मिंदो भवन्ति रित करण रसायन कथा। जहां पर भक्त मिलते हैं वहां भगवान के गुणों की चर्चा होती है। तो हमारे लिए कर्तव्य यह है कि हम अपने आप को ऐसे भक्तों के संग में रखें। और प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब इस प्रकार इस मुंबई में भी अनेक सारे जो मंदिर हैं उसमें नित्य निरंतर नित्य भागवत का सत्संग होता है, भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त होता है, और अन्य स्थानों में सत्संग प्रोग्राम भी अलग अलग स्थान में होते हैं। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उस भक्तों के सानिध्य में भगवान की कथा सुनने में लगाए, उससे मति सती यस्यति वासुदेवे, ये कथा ही हमारी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान में लगा देगा। और मन बुद्धि का और शरीर को भगवान में लग जाना यही सर्वश्रेष्ठ चीज है। तो आज के श्लोक यही है कि हमें हमारी मति को सती बनाना है, और इसके लिए हमें प्रतिदिन इस नित्यम भागवत सेवया भगवान की गुण कथा कीर्तन को गाना सुनना, और ये करते करते हमारा मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के साथ इस भागवत सत्र को विराम दिया जा रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। किसी के पास प्रश्न देगा तो प्रश्न यथाबुद्धि उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
मन मन दूंगा।